کوئی ایشنس حاضر نہیں ہے. بس کلی پانی نہیں پیا
Thank you. की पूजा करने से पहले अपने जो भाव पूजा के बनाए जाते हैं उसे पूजा की भूमिका या पीठिका कहते हैं। उसमें कैसे भाव होना चाहिए ये आचार्यों ने लिखा है, अपन उस बात को समझ रहे हैं क्योंकि वो संस्कृत में कहा है, तो उसका क्या अर्थ है अगर अपने दिमाग में वो अर्थ रहे, भले शब्दार्थ न रहे पर भावार्थ तो बना रहे कि हम किस भाव से पूजा कर रहे हैं, वो अपन पढ़ रहे थे। दो पद और रह गए उसमें, वो आज कर लें। इस घड़ी में भी 4:45 हैं। अगर इसके हिसाब से चलूंगा तो क्या, तो उसके बाद रख लेना आप आराम से, है ना। द्रव्यस्य सुथिमधिदं व्यथानुरूपम् मनस्य सुथिमधिदं व्यथानुरूपम् भावस्य सुथिमधिकानुधिदं तु कामम् को बोलते हैं वायु शुद्धि और भाव शुद्धि को बोलते हैं अंतरंग के परिणामों की शुद्धि। शरीर की शुद्धि को द्रव शुद्धि कहेंगे, वचन की शुद्धि को भी द्रव शुद्धि ही कहेंगे, लेकिन मन की शुद्धि को भाव शुद्धि कहेंगे। तो कह रहे हैं कि द्रव्य से शुद्धि अभिगम्य, माने शरीर की जितनी भी शुद्धि वायु हो सकती थी यथानुरूपम मैंने वो कर ली है। भावस्य शुद्धि अधिकाम अधिगंतु काम, मेरे इस बाह्य शुद्धि का उद्देश्य यह नहीं था कि मैं सिर्फ वाह्य शुद्धि ही करूं, मेरा उद्देश्य तो अंतरंग के भावों की शुद्धि का है। मेरी कामना अंतरंग के भावों की शुद्धि की है, सो वह भी मैंने जितने बने हैं वो करके आया हूं और यहां अपने भावों की शुद्धि और करना चाहता हूं। अधिकाम अधिगंतु कामा, मैंने उसको प्राप्त भी किया है भावों की शुद्धि को और प्राप्त करना भी चाहता हूं। पूर्णतः भावों की शुद्धि हो जाती तो पूज्य पूजक का भाव ही नहीं रह जाता, फिर पूजा किसकी। कहते अभी पूरी शुद्धि नहीं है भावों की, पर जितनी आवश्यक है, कितनी आवश्यक है भाव शुद्धि, मन में संक्लेश ना हो, मन में रागद्वेष का भाव ना उठे, इस तरह का विचार। अपन बोलते ना मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, तो मन शुद्धि के मायने क्या है, मन में किसी दूसरे के प्रति ईर्षा द्वेष मात्सर्य ये भाव नहीं है, बस यही मन शुद्धि है। उसके अलावा कैसे कर सकते हैं, श्रद्धा भक्ति वो तो हमारे मन में रहेगी ही। कह रहे हैं आलंबनान विविधान्य अलंब्य अवलंब्य वलगन, अब मैंने अपने उस भाव की शुद्धि को पाने के लिए द्रव की शुद्धि तो जितनी हो सकती थी सो करके आया हूं, भाव की शुद्धि भी करी है लेकिन उतनी नहीं हो पाई, मैं भावों की शुद्धि चाहता हूं। उसके लिए अपने भावों को कहीं ना कहीं लगाए रखने के लिए बहुत प्रकार के आलंबन चाहिए मुझे। सो भगवान की वीतराग मुद्रा एक आलंबन है और फिर जो अष्ट द्रव्य वे भी आलंबन है, ताकि हमारा मन एंगेज रहे उसमें लगा रहे। ऐसे खाली हाथ जोड़ करके पूजा पढ़ो तो अलग चीज है। और अगर अब जल चढ़ाना है, अब चंदन चढ़ाना है, यहां नाम मन नहीं जाएगा जल चंदन में अक्षत में, इनमें हमारा मन इनके आलंबन से रुका रह जाता है। इसलिए ये हमने बाह्य में जो भी आलंबन है विविध प्रकार के उनको भी प्राप्त करके भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञ। अब इसका अर्थ जो है थोड़ा कैसे लगाएंगे, मैं अभी सोच रहा था कि करोमि यज्ञ में पूजा कर रहा हूं, यह तो ठीक है। पुरुषस्य का अर्थ यहां पर हमारे ख्याल से पुरुष का अर्थ आत्मा लेना चाहिए। वास्तव में भूतार्थ यानी जो वास्तविक पूजा है वह तो आत्मानुभूति ही है, आत्मा की प्राप्ति ही वास्तविक पूजा है, मैं उसी के लिए यह भगवान की पूजा कर रहा हूं। यह अर्थ भी इसमें से, और क्या अर्थ लिया उसमें, कुछ और लिया क्या, नहीं, क्योंकि इन्होंने भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य, पुरुषस्य आत्मस्य है ना, वही निकलना चाहिए अर्थ। तो इस तरह क्या अर्थ हुआ, मैंने शरीर की जितनी शुद्धि बनी है उतनी करी है, मन की भी करी है, लेकिन मैं उस भावों की या मन की शुद्धि के लिए यहां आया हूं। मेरे पूजा का उद्देश्य अपने भावों की शुद्धि है, और उसी भावों की शुद्धि के लिए मैंने शरीर की शुद्धि करी है, और विभिन्न प्रकार के अस्त्र द्रव्य और भगवान की मूर्ति ये सब मेरे लिए आलंबन है, मैं इनके द्वारा भगवान की पूजा करता हूं। क्यों कर रहा हूं, मैं वास्तव में अपने ही आत्मा की प्राप्ति करना चाहता हूं, अर्थात आत्मा के उस परमात्म अवस्था की प्राप्ति जो भगवान ने प्राप्त कर ली है, वही अवस्था मैं भी प्राप्त करना चाहता हूं। और अब अंत में कह रहे हैं, अर्हं पुराण पुरुषोत्तम पावनानि,
आधा हा है और नामी छुट्टी एक ही मात्रा, तब बनता बहनी, इसमें तो सब में बहनों बहनों होना चाहिए, बनहव नहीं होना चाहिए। खैर उसका मतलब है अग्नि या कि ज्योति, केवल ज्ञान रूपी जो स्फुरायमान निर्मल ज्योति है, उस ज्योति में पुण्यम समग्रम अहम एक मना जुहोमि, इस पूजा के द्वारा मुझे जो पुण्य मिलने वाला है, जो मैंने पहले कहा था कि मैं ये पूजा सातिशय पुण्य के लिए कर रहा हूं, मुझे वो जो पुण्य प्राप्त होगा अहम एक मना, मैं उस केवल ज्ञान रूपी जो ज्योति है या केवल ज्ञान रूपी जो प्रकाश है उसके भीतर इस पुण्य को भी मैं डाल देना चाहता हूं। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे छोटी मोटी चीज देकर के संतुष्ट नहीं करो भगवान, मुझे तो वही ज्योति चाहिए है, मैं उससे कमती में मानने वाला नहीं हूं। मैं पूरी वही के आशय यही है कि मैं इस प्रक्रिया के द्वारा जो भी पुण्य मुझे प्राप्त होगा उसकी कामना नहीं करता हूं। जब अपन ऐसी कामना नहीं करेंगे तो और पुण्य का संचय होगा। देखो मजा, अपन जिस चीज का त्याग करते हैं तो वो चीज और मिलेगी। तो कह रहे हैं कि मैं इस पूजा के फलस्वरूप जो भी मुझे उपलब्धि होगी वो बहुत छोटी मोटी सांसारिक उपलब्धि मुझे नहीं चाहिए, अगर प्राप्त हो तो मुझे तो केवल ज्ञान रूपी ज्योति ही मुझे प्राप्त करनी है। पूजा का उद्देश्य अपन ने सारा पढ़ा, उसके बाद क्या मिला अपन को लास्ट में जाकर के सारी पूजा में, पहली चीज कि भगवान के प्रति जितना हो सके हम अपनी श्रद्धा और भक्ति और विनय प्रदर्शित करें, एक चीज। दूसरी चीज अपने परिणामों को पूजा के दौरान निर्मल बनाएं, क्योंकि हमारा पूजा का उद्देश्य परिणामों की निर्मलता है, और फिर इस पूजा के द्वारा छोटे मोटे पुण्य को पा करके हम संतुष्ट ना हो, हम उस पूजा का फल उस केवल ज्ञान रूपी ज्योति को ही प्राप्त करना है ऐसा मान करके चले। ये इस तरह के भाव बना करके अगर अपन पूजा करते हैं तो वह पूजा हमें बहुत फल देने वाली है, इसलिए इसकी भूमिका या पीठिका में अपन ने यही रखा है। और फिर उसके बाद तो 2400 तीर्थंकर मेरे लिए कल्याणकारी हो तो उसके लिए सभी भगवान के नाम ले लिए हैं, वृषभो नः स्वस्ति। ना का मतलब नवेशु नहीं है, ना का मतलब यहां पर नकारना नहीं है, ना मतलब अस्माकम, हम सबके लिए, ये संस्कृत का शब्द है नः, नः मतलब अस्माकम, अस्माकम मतलब हम सबके लिए। तो वृषभो नः स्वस्ति, हम सभी के लिए वृषभनाथ भगवान कल्याणकारी हो। स्वस्ति श्री अजिता, संभवा स्वस्ति, स्वस्ति श्री अभिनंदना, सुमति स्वस्ति, स्वस्ति श्री पद्म प्रभा, श्री शिपार्श्वा स्वस्ति, स्वस्ति श्री चंद्र प्रभा, श्री पुष्पदन स्वस्ति, स्वस्ति श्री शीतला, श्री श्रेयान स्वस्ति, स्वस्ति श्री वासुपूज्य, श्री विमला स्वस्ति, स्वस्ति श्री अनंता, श्री धर्म स्वस्ति, स्वस्ति श्री शांति, श्री कुंत स्वस्ति, स्वस्ति श्री अरहनाथ, श्री मल्ली स्वस्ति, स्वस्ति श्री मुनीशुभ्रता, श्री नमी स्वस्ति, स्वस्ति श्री नेमिनाथ, श्री पार्श्व स्वस्ति, स्वस्ति श्री वर्धमान। इस तरह से ये 2400 तीर्थंकर हमारे लिए मंगलकारी हो, हमारा कल्याण करने में निमित्त बने, इस तरह की भावना से ये अपन ने कर लिया। फिर 64 रिद्धियों का वर्णन आएगा, वो बात की चीज है, देख लेंगे। कल एक प्रश्न था, वो कहां चला गया, है क्या इसमें, वो उन्होंने किसी के कंटिन्यूशन बताने का मेरा मन था पर कल टाइम हो गया था, उसमें ऐसा कुछ था। ये था आपके द्वारा बताया गया भक्तांबर वसंत तिलका छंद में पढ़ना चाहिए, तो कृपया एक छंद आप थोड़ा पढ़ करके बताने की कृपा करें, ये कल पूछ रहे थे। हमने कल आपको कहा भी था कि इसकी जो मैंने छंद की जो लय है वो तो बहुत सीधी सीधी से है, ह्रस्व दीर्घ का ना 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 भक्तानर प्रणत मणि मणि हो गया पूरा, वो तो है जो अपन को आता है तो वो ही अपने को आएगा, उसके अलावा दूसरा तो आए सीखने नहीं अपने में। हाँ, तो वो जो ओरिजिनल है वो नहीं होती उस पर लिखने में, पहले उसको मिटाओ फिर लिखो, जिनकी फ्रेश रहती तो उनको फट से बन जाएगा कि हाँ ये है, वो एकदम थोड़ी आएगा, फिर से उसकी लय पकड़नी पड़ेगी। ना 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 सुनना हो तो कभी आचार्य महाराज के चरणों में और निवेदन करेंगे तो और अच्छे से वो इस वसंत तिलका संत को सुनाएंगे। और उसके बाद दूसरे नंबर पर सुना पाते हैं नियम सागर जी महाराज, एकदम एग्जैक्ट वो भी हमसे बड़े महाराज हैं। नियम सागर जी महाराज को भी बहुत अच्छे से आता है। हम बच्चों की इच्छा है कि आज आप हमें एक भजन सुनाए, बहुत अच्छी इच्छा है। देखेंगे हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता तो क्या करें, तो लगाओ। कैसे लगाओ? मुझे नहीं पढ़ूंगा तो फेल होऊंगा, फेल नहीं होऊंगा तो भी कम नंबर आएंगे, मेरा ज्ञान भी कम रह जाएगा, इसलिए मुझे पढ़ना चाहिए। एक चीज अपने भीतर ये, और मैं पढ़ने में जिस विषय में कच्चा हूं उसका मुझे और अधिक अभ्यास करना चाहिए। अभी मैं एक घंटे पढ़ता हूं, अब मुझे दो घंटे पढ़ना चाहिए। मन नहीं लगता मत लगने दो, इससे क्या फर्क पड़ता। कौन कितनी सारी चीजें हैं जिनको हमें बिना मन का करना पड़ता, करो। मन नहीं लगता फिर भी पढ़ेंगे, अभी एक घंटे पढ़ते थे अब और दो घंटे पढ़ेंगे, देखें कैसे नहीं लगता मन। संकल्प कर लेने से बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। बच्चों को पढ़ने का संकल्प कर लेना चाहिए, रोज रोज नौ बार नमोकार मंत्र पढ़ के संकल्प कर लिया कि एक घंटे तो टेबल से हटूंगा नहीं, किताब सामने रहेगी, मत लगने दो मन। लेकिन यहां वहां नहीं जाऊंगा, मन नहीं लग रहा इसलिए चलो घूम के आते हैं, इसलिए चलो खेल के आते हैं, इसलिए चलो कि टेलीविजन देख लेते हैं। नहीं, वो उतनी देर भी अगर एक घंटे आप किताब हाथ में लिए रहें बिना मन के भी पन्ने पलटते रहें, आप आश्चर्य करेंगे कि कुछ दिन के बाद अपने आप उस चीज में आपका मन लगने लगेगा, क्योंकि उतनी देर तक आप और दूसरी चीजों से अपने ज्ञान को बचाए रखा आपने। नहीं तो हम खाली टाइम में दुनिया भर की चीजें जानने में अपने ज्ञान को लगाए रखते हैं, फिर जो मेन चीज है उसके जानने के लिए और कहां से लाएंगे। जितना सूक्ष्म है उसके माध्यम से संसार की बातें जान लो, या कि अपनी पढ़ाई कर लो, या कि और दूसरी चीज कर लो, एक आध कुछ हो पाएगा। इसलिए दो ही चीजें ध्यान में रखने की कि मुझे पढ़ना चाहिए, ऐसा इंटरेस्ट अपने मन में क्रिएट करना, और दूसरा अगर पढ़ने मन नहीं लगता तो संकल्प करके पढ़ना शुरू करना। और या फिर जो पढ़ने वाले हैं उनके साथ में बैठने से, उनके साथ अच्छी संगति में रहने से भी पढ़ने का। देखो अगर अपनी कक्षा में अपन के 70 नंबर आते हो और किसी के नहीं आते हो तो अपन क्या कहेंगे, अरे हम बहुत होशियार हैं और हमको क्या करना। और अगर किसी दूसरी कक्षा में पहुंच जाओ वहां के बच्चों के तो 80-80 नंबर आते तो अपन को अपने 70 नंबर कैसे लगेंगे। और पढ़ना चाहिए, यहां तो 70 नंबर लाना कोई विशेष बात नहीं है, हम तो अपनी कक्षा में सोचते थे कि बहुत विशेष बात है। तो दूसरे को देख करके भी हमारे मन में उत्साह जागृत होना चाहिए, देखो उसका तो इतना मन लगता है मेरा क्यों नहीं लगता, मुझे भी लगाना चाहिए, बार बार मुझे अभ्यास करना चाहिए। ऐसे करेंगे तो लगेगा भैया। रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाया जाता, अब जब आएगा तब बताएंगे, अभी से क्यों बताएंगे, नहीं तो फिर उस दिन क्या बताएंगे बताओ। मोक्ष सप्तमी के उपवास की कहानी बता दो। देखो हमने सवेरे भी सुनाई थी भैया, सुबह नहीं थे क्या आप? एक सेठ जी के, एक राजा के यहां पर दो बेटियां हुई, दोनों के अंदर बहुत प्रेम था, फिर वो बड़ी भी हो गई तो उन्होंने इतना प्रेम था कि उनका विवाह एक ही घर में करना पड़ा, तो दोनों का विवाह एक ही घर में हो गया। वो फिर भी एक साथ रहने लगी। फिर एक मुनि महाराज जी आहार करने के लिए आए, चारण रिद्धिधारी थे, उनको पूर्व भाव के बारे में पूछा, उनको बहुत ज्ञान था तो उन्होंने बता दिया कि ये दोनों पूर्व भाव में एक बार एक तो सेठ की बेटी थी और एक माली की बेटी थी, लेकिन दोनों ने वहां उस समय जो मुनि महाराज उद्यान में आए थे उनके पास, उन्होंने मुनि महाराज के कहने से ये मुकुट सप्तमी व्रत दोनों ने एक साथ करा था। उसके फलस्वरूप वे पहले स्वर्ग में गई और स्वर्ग से आकर के उस राजा की दोनों बेटियां हो गई। इतनी बात सुनकर के उन दोनों बेटियों ने, जिनके विवाह हो गया था, बड़ी हो गई थी, उन्होंने कहा अरे हमारा पूर्ण जीवन ऐसा था तो अभी भी हम वर्तमान में भी मुकुट सप्तमी व्रत धारण करेंगे। और फिर उन्होंने तो श्रावक के व्रत ले लिए, मुकुट सप्तमी का व्रत 7 साल का करा। तो कहते हैं कि उससे उनको उस स्त्री पर्याय से मुक्ति मिल गई, दोनों जाकर के एक इंद्र और एक प्रतिंद्र हो गई और वहां से आकर के और अब मोक्ष जाएंगी। सार्थक हो गया उपवास करना, मुकुट सप्तमी का व्रत करना। क्यों सार्थक हो गया? हमारे अपने भाव इस तरह के हम बनाए कि हमको इसके माध्यम से क्या पाना है। सबसे पहले तो सबके प्रति हमारे मन में प्राणी मात्र के प्रति दया करुणा और प्रेम का भाव आए और धीरे धीरे हमारी मुक्ति संसार से हो। ये उसकी कहानी हुई है। और क्या बताएं? महाराज, छोटे महाराज जी, बफर सिस्टम, इसका मतलब है कि आप कृपा करके अंग्रेजी की टांग नहीं तोड़ो। आपको जब ये नहीं मालूम कि इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं तो आप बफर क्यों बोलते हैं? बफर सिस्टम है वो। हां, एफ यू बी यू डबल एफ यू बी यू डबल एफ ई बुफे, हाँ वी यू डबल एफ ई बुफे सिस्टम है ये। बुलफैट और बुफे दो सिस्टम होते हैं, ब्रिटिश के हैं ये दोनों। एक में जो है सेल्फ सर्विसिंग रहती है, दूसरे में परोसा जाता है। और परोसने वाला ऐसा नहीं होता है, परोसने वाला इतने बड़े बड़े ग्लोव पहने रहता है, उसके हाथ से टच नहीं होती कोई भी चीज। और एक प्लेट में एक ही आइटम जाता है, उसके बाद प्लेट रिजेक्ट हो जाती है। जितना रईस आदमी होगा उतनी प्लेट चलाएगा। 2000 लोगों के लिए अभी तक अधिकतम 16 प्लेट की डिश दी गई है, इससे ज्यादा किसी का रिकॉर्ड नहीं है। बहुत सबसे रईस और सोने छोटी मोटी ऐसी नहीं, कागज की प्लेटों में, बढ़िया प्लेट में। और एक आइटम एक प्लेट में दे दिया तो दूसरा आइटम उसमें नहीं जाएगा, वो प्लेट रिजेक्ट। 2000 प्लेटें एक आइटम के बाद रिजेक्ट, फिर दूसरी 2000 प्लेटों में दूसरा आइटम। और वो जो पहने दस्ताने पहने रहते हैं परोसने वाले, स्टरलाइज कमरा होता है जिसमें की सारी सामग्री ओपन, क्योंकि सामग्री को ओपन खोलना यानी कंटामिनेशन की तैयारी करना, पॉल्यूशन, वातावरण के सारे जीव राशि उसमें। इतना ध्यान रखकर के ये कभी होटल मैनेजमेंट पढ़ो तो उसके लिए ये है। अपन तो ही नकल ची, हाँ अकल के बिना नकल करेंगे तो यही स्थिति। ग्राउंड में पानी छिड़का, देखो ग्राउंड में पानी छिड़का, हो गया इनका शुद्ध चौका और शुरू हो गया साहब। यहां पानी का स्टॉल लगाया, वहां पर फलानी चीज मिल रही, वहां पर दाल फ्राई हो रही, वहां पर आलू की सब्जी बन रही, वहां पर भट्टी लगी हुई है और भट्टी लगी है सो उसमें वो तंदूरी रोटियां, अभी आया पेपर में कि तंदूरी रोटियां खाना और शाकाहारी अपने आप को मानना दोनों चीजें कंट्राडिक्टरी हैं। आप अपने को प्यार से मांसाहारी मान लीजिए अगर आप तंदूरी रोटी खाते हैं तो। बस सीधा सीधा लिख दिया उन्होंने। अब भी मेरे पास अभय सागर जी महाराज के पास से, आचार्य के पास से आए हैं कि इस चीज को आप प्रचारित करवाइएगा। एक पूरा प्रिंटेड मैटर आया है कि कोई भी तंदूरी आप अपने घर में नहीं बना सकते, वो जो बनाने वाले आए हैं उनके बारे में आपको नहीं मालूम कि क्या मिलाएंगे, कौन सी चीज मिलाएंगे। आपने तो ऑर्डर दिया है तंदूरी, वो क्या लेके आए हैं, आटे में क्या मिलाए आपको मालूम? आपको तो खाने से मतलब है। तो तंदूरी रोटी इस तरह से, और वो भी चलते फिरते, और कितना कंटामिनेशन, लाइट जल रही है वहां पर। छोड़िए, जो चीज जैसी है उसको वैसा अपन कहें, ज्यादा अतिशयोक्ति करने से कोई नहीं मानने वाला। एग्जैक्ट जो चीज है वो अपन कहें कि उसको फूड हैंडल करने वाला हम कोई भी हो, फूड हैंडल करना भला आदमी नहीं है जो फूड हैंडल करता, ये बात मान के चले। क्यों अपन उसको ये कहें कि फलाना है? नहीं, वो लेकिन ठीक नहीं है। वो जो बनाता है उसका अपना कोई धर्म नहीं है, उसको तो सिर्फ पैसा कमाना है। इसलिए इस सिस्टम का निषेध तो होना ही चाहिए। वो ऐसे फेंकते जा रहा है और उसको आप उठा उठा करके खाते चले जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही अभक्ष हो गया, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं कहीं से कहीं तक। इसलिए इस चीज को आप इस तरह से समझें। और बुफे सिस्टम के मायने ये नहीं है कि खड़े होकर के खाया जाता है, ये ध्यान रखना, खड़े होकर खाने का है ही नहीं, टेबल कुर्सी पर बैठ करके खाया जाता है। बस इतना जरूर है कि आपके सामने पेट रखी है, सो आप चम्मच से, हाथ से छूने का काम नहीं है, चम्मच से उठा करके आपको जो चीज चाहिए ले लीजिएगा और उसकी चम्मच उसी में रख लीजिए, अपने खाने वाली चम्मच से मत उठाइएगा उसको। हाँ नहीं, आप उस चीज को कभी आप मैनेजिंग का कोर्स तो देख लिया अपन, होटल मैनेजमेंट का, उसमें लिखा हुआ है उसकी चम्मच उसी में डली रहती है, उसी चम्मच से उठा के अपने पड़ोस में चुपचाप। क्यों ऐसा क्यों करना पड़ा? वहां पर कोई किसी का नहीं है, विदेश में न कोई कोई इतनी फुर्सत है कि आपके लिए परोसे। ये भारत है, भारत में हम एक दूसरे को खिलाने का आनंद जानते हैं, वो क्या जाने आनंद, वो तो खाने का आनंद जानते हैं अपना। और हम यहां पर हम लोग तो आधा भोजन तो हम खिलाते ही संतुष्ट हो जाते हैं, हम महाराज के हार करवाते हैं, हम बाद में लोगों से पूछते कि जाओ, कहते भूख ही नहीं लगी, मजा आ गया आज तो हार दे करके, कहां चली गई भूख। दूसरे अपने घर में चार मेहमान आ जाते हैं, उनमें अपन ऐसे एंगेज हो जाते हैं, अब नहीं होते होंगे, पहले के लोग तो चार मेहमान आ गए उनमें बढ़िया से जो है उनको परोस रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, आनंद है, ये खिलाने का आनंद। अब उनको खिलाने की फुर्सत ही नहीं है सुनने की, जो धरो है तो अपने हाथ से परस लो और ले लो और खा के चले जाओ। ये प्रक्रिया अपनी थोड़ी है भारतीय संस्कृति की, हम तो प्यार से कहकर अरे एक और ले लो भाई, एक और थोड़ा सा, अरे थोड़ा सा और लो, मना मना करके खिलाने का वो जो आनंद है वो आनंद तो खत्म हो गया बुफे सिस्टम में। तो इसलिए अगर इसका निषेध करते हैं तो ये सही है। और इनमें लिखा है कि खड़े होकर के तो हार भी लिए जाते हैं, तो खड़े होकर के हम हार लेते हैं तो हम ऐसे नहीं होते हैं आपके जैसे खड़े होकर बुफे सिस्टम में जूता चप्पल पहने हुए, आप तो एक ही हाथ से खाते हैं, हम तो दोनों दोनों हाथ से खाते हैं। तो इसलिए उसमें जो मुख्य बात है वो है अशुद्धि की, अशुद्धि की बात है उसमें कि कौन व्यक्ति फूड हैंडल कर रहा है अपन नहीं जानते हैं। इसलिए आप मंदिर के कपड़ों से हार ले लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं अगर तो क्यों? देखो भैया, मंदिर के कपड़ों से हार लेने में कोई निषेध नहीं है, लेकिन फिर भी मंदिर के कपड़े मंदिर के पूजा के काम के नहीं रह गए, ये ध्यान रखो। जिन व्यक्ति ने मंदिर के कपड़े से आहार दे लिया, अब वे कपड़े मंदिर में पूजा के काम के नहीं रहे, अब वो आप अपने काम में ले लो, मंदिर में दूसरे नए ध्यान के रख दो। अगर आपको मंदिर के कपड़े से ही देने का शौक है तो, क्योंकि अब वो झूठे हो गए, आपने एक बार उनसे आहार दान दे लिया, अब वो मंदिर में पूजा अभिषेक के काम के नहीं रहे। इसलिए हम निषेध करते हैं कि मंदिर के कपड़े पहन करके और आहार में शामिल ना हो, क्योंकि फिर वे अभिषेक के काम के नहीं रह जाएंगे, और आप तो जाएंगे और अब भी वहां जाके उतार के और आ जाएंगे कि हमने तो दे लिए आहार इस तरह। तो इसलिए हम इसका निषेध कर देते हैं कि जो मंदिर के कपड़े पहन के आए हैं उनसे आहार नहीं लेंगे। कल पारसनाथ भगवान का निर्वाण है, कौन सी पूजा करना चाहिए, सामूहिक पूजन कब होगी? सामूहिक पूजन तो सबेरे से 7:30 बजे से कर रहे हैं, और 7:30 से शुरू करके 8:05 तक जो है वो लास्ट लगभग आ जाएगा। 8:05 पे मैं कोशिश करूंगा आने की। मेरी बात पूरी सुने पहले, फिर उसके बाद आपको जो करना हो वैसा कर लेना। हम लोगों ने अभी बैठ करके डिस्कशन किया कि 7 बजे कोई नहीं आ पाएगा, फोकट बात है, जो प्रैक्टिकल है उसको करना चाहिए, है कि नहीं? 7 बजे, और फिर बाद में हो रहा है इंडियन टाइम से 7:30 बजे, इससे अच्छा एग्जैक्ट बोलो ना कि 7:30 बजे आना आपको, 7:30 से टाइम बता दो कि ये लिमिट है, उतने में करना। आप चाहे जब शुरू करो, आप 7:30 बजे शुरू करेंगे आराम से 8:05 तक आप आ जाएंगे निर्वाण कांड तक, तब तक मैं कोशिश करूंगा कि 8:05 या 8:10 पे आ जाऊं और मेरे सामने 5 मिनट में निर्वाण कांड पड़ा और सबने लाडू चढ़ाए और धीरे से अपन यहां से निकलेंगे बाहर और मंच पे पहुंच जाएंगे 8:15 पर, और उसके बाद फिर जो अपने को प्रवचन और महाराज का जो मनाना है दीक्षा दिवस, वो 8:15 से 9:30 बजे तक अपन पूरा कर लेंगे। कोई भी इसमें ज्यादा विस्तार या उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा प्रोग्राम है। रही बात पूजा की, कौन सी करना चाहिए, तो पारसनाथ भगवान की पूजा करेंगे और निर्वाण कांड अंत में पढ़ेंगे, वही हो गया। अपने भगवान बड़े सीधे साधे हैं, वो बिल्कुल सस्ते मान जाते हैं, वो कहते बस इतना ही कर लो, इससे ज्यादा नहीं। सिख समाज में भोजन या लंगर के वक्त धनवान या गरीब में कोई फर्क नहीं होता, समाज के कार्य में सब बराबर है। जैन समाज में भोजन के वक्त भी भेदभाव नजर में आता है, समाज का कार्य होते हुए भी। महाराज मेरा किसी से राग द्वेष नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कितने ही कहो, आप 100 दफे भी कहो कि मेरा कोई राग द्वेष नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहां पर राग द्वेष से रहित तो कोई भी नहीं है। मैं भी ऐसा डिक्लेयर नहीं कर सकता कि मेरा राग द्वेष नहीं है, सिर्फ भीतर बैठे हैं बाबा जी, बस वो बाबा जी के राग द्वेष नहीं है, बाकी जितने बाबा जी यहां बैठे अपन साहब सबके राग द्वेष है, इसलिए ऐसा तो है ही नहीं। मन में प्रश्न उठा इसलिए पूछ लिया, अच्छा प्रश्न है, इसमें डरने की क्या बात। देखो कई जगह पर इस तरह की प्रक्रिया है, अपन को सबके प्रति प्रेम भाव, समान भाव तो नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, समान भाव हो भी नहीं सकता। सत्वेशु मैत्रीम गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टेशु जीवेशु कृपापरत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। अपने यहां तो ये लिखा है, समान भाव तो किसका हो सकता है, जो ध्यानस्थ है आत्मस्थ हो गया है वो ही साम्य भाव रख सकता है, इक्विनिमिटी उसी को हो सकती, समता भाव। बाकी सबके लिए क्या करना, प्राणी मात्र से मैत्री रखना, जो गुणों में ज्यादा है उनके प्रति हर्ष भाव सहज रूप से होगा, जिसकी श्रद्धा ज्यादा होती है अलग दिख जाती है और उसके प्रति हमारे मन में भी अनुराग अपेक्षाकृत दूसरे के अधिक होता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। जो गुणवान दिखाई पड़ता है उसकी पीठ थपथपाने का मन होता ही है, इसको पक्षपात नहीं कहेंगे न इसको राग द्वेष कहेंगे, ये ध्यान रखना। इसलिए अगर कोई व्यक्ति गुणवान व्यक्ति की प्रशंसा करता है तो उसको राग द्वेष नहीं कहेंगे, उसके गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं। अपने बेटे की गुण हो चाहे अवगुण हो प्रशंसा करना ये राग है, क्योंकि मेरा बेटा, लेकिन दूसरे के बेटे के गुणों की प्रशंसा करने में राग नहीं कहलाएगा, कहलाएगा भी तो धर्मानुराग कहलाएगा, उसके हित के लिए है वो प्रमोद भाव। और क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, दीन दुखी को देख करके आप साम्य भाव धारण मत करें, कृपा करके करुणा भाव धारण करें, हाँ दीन दुखी को देख करके। और जो विपरीत मार्ग पर चल रहे हैं, भगवान के बताए मार्ग से उल्टे मार्ग पर चल रहे हैं, उनके प्रति क्षोभ ना करें, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं, साम्य भाव रखो। माध्यस्थ भाव, साम्य भाव का अर्थ वहां पर क्या है, समता भाव नहीं, माध्यस्थ भाव, न राग न द्वेष न निंदा न प्रशंसा। उल्टे रास्ते चल रहे तो निंदा करें, कहते नहीं कोई निंदा नहीं, और प्रशंसा भी नहीं करना, निंदा प्रशंसा दोनों से रहित माध्यस्थ भाव, ऐसे चार भाव कहे गए हैं। इसलिए अगर समाज में भोजन इत्यादि के वक्त भेदभाव देखने में आता है तो वो होगा ही, कोई त्यागी व्रती आएगा तो आओ भैया ऊपर ले जाओ, भाई इनको सोत के भोजन में ले जाओ, ये जो है भैया वो है इस तरह भोजन करने वाले उनको वहां बिठा लो, इनको जरा इस तरह, जिससे हमारा विशेष धर्मानुराग होगा उसका ज्यादा ध्यान रखेंगे, जो सामान्य व्यक्ति आएगा भैया बैठो। और प्रेम तो सबसे है, प्रेम भाव सबसे, इसलिए सब आए हैं, लेकिन गुणिषु प्रमोदम, हाँ गुणवान के प्रति हर्ष का भाव अवश्य होगा ही होगा। इसलिए ये संभव नहीं है, सिख किसी भी समाज में कोई प्रक्रिया चलती है तो ठीक है वो अपने हिसाब से करते हैं, कि वहां के अपने यहां भी तो अपन जब दर्शन इत्यादि करते हैं तो हमने कई बार कहा कि भगवान के दर्शन करते समय सब समान है, चाहे सेठ जी आओ तो और चाहे गरीब आदमी आओ, सब भगवान के दर्शन कर रहे हैं, सामान्य रूप से दर्शन करेंगे। ऐसा थोड़ी कि जब सेठ जी आएंगे तो हटो सारा मंदिर खाली करो, अब सेठ जी आ रहे हैं राजाधिराज, ऐसा होता है क्या? फिर ऐसा तो हमने किया नहीं कि अब वो सेठ जी आ रहे हैं इसलिए सबकी सीट अलग करो और भोजन इत्यादि सामग्री में सब जने हटो अब सेठ जी को कराएंगे। अरे थोड़ा स्थान विशेष दे दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, गुणिशु प्रमोदम है, प्रशंसा कर दी, थोड़ा स्थान ज्यादा, भैया सेठ जी आ रहे हैं वो कितना ध्यान देते हैं, कितनी बार हमारा काम अटकता है उनसे हमारा काम होता है, अरे बैठो आप बैठो, आपको हम विशेष रूप से बिठा लेंगे, नहीं बिठा लेंगे क्या, अरे इतना तो चले गए, इसमें तो इसमें इतना वो नहीं है, और अगर इसको भी जीत सकें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। ईमानदारी से कहने सुनने में अच्छा लगता है, बाकी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। थोड़ा भाव आ ही जाता है, अपना कोई व्यक्ति होगा तो आ ही जाएगा उसमें थोड़ा भाव, अरे आप भी आ गए, बैठो हाँ जल्दी बैठो, और बाकी लोग कुछ भी नहीं है आपके, नहीं अब क्या करें, वो उनसे बहुत पुराना परिचय है, अब आपसे हो जाएगा जब आपके प्रति भी ऐसे ही भाव हो जाएगा, ये तो हो गई हमारे आर में हो जाता, कोई व्यक्ति दिख जाता अरे ये तो आप भी आ गए, हाँ जल्दी इसको लाओ पहले लाओ, इसको एक रोटी का ग्रास लाओ, ये तो आ ही नहीं पाता कभी, हफ्ते भर में एक आध बार आ पाता, लाओ तो उसको, आप तो रोज ही दे रहे हैं, ऐसा हो जाता है। अभी हमने मना कर दिया था इतवार के दिन, कुछ लोगों को भारी बुरा लग गया, जबकि एक दिन पहले उनने खूब पूरा पूरा दिया था, उस दिन हमने कहा कि एक दिन नहीं दोगे तो कोई बड़ा हो जाएगा, वो एक अभी छोटा सा आया बेचारा हफ्ते भर में, उसको दे लें दो एक ग्रास, कितने हैं कुल जितने ग्रास हैं उतने तो लेना, वो एक तुमने और दे दिया तुम कल दे देना, तो उनको बुरा लग गया, कर लगो तो लगो अब क्या कर सकते, हमने तो ना मन में बुराई नहीं, आप रखो शत्रुता तो रखो, उसका दुख आप झेलो। देखो हमें थोड़ी हमारे मन में नहीं था, हमारे मन में ये था कि आज आप नहीं भी देंगे तो कोई फर्क नहीं, और इसको दे लेना तो आप अपनी, ये कोऑपरेशन कहीं भी नहीं मिलता, कोई व्यक्ति ये नहीं कहता है कि नहीं पहले पहले इसको दे लेने दो मैं भी देऊंगा, मैंने तो हाथ तगा लिया दे लिया हो गया, ऐसा कोई नहीं कहता। जो बहुत मुश्किल से अपना समय निकाल करके जो अभी अभी शुरू करता है, मेरा सब पे ध्यान रहता, चेहरा देख करके समझ में आने लगता कि इनकी कैसी है भावना, तब उससे अपने आप लगने लगता कि इनको और देने दो और दे लेने दो इनको, वहां पर एक ही लाठी से सबको नहीं हांका जा सकता, ये ध्यान रखना। हाँ कम से कम, नहीं तो आपने एक ही लाठी से सबको हांक दिया, एक ग्रास दो आगे बढ़ो एक ग्रास दो आगे बढ़ो, क्या हो रहा, ऐसे थोड़ी, उसमें जिसके जैसे भाव हैं उसको वैसे दान की प्रक्रिया में वो शामिल हो। आपको ये ठीक लगे तो ठीक है, अगर राग द्वेष लगे तो हमने तो पहले ही कही कि हमारा भी अभी राग द्वेष गौ कहाँ है ही, वो तो अभी इसी से सिद्ध हो गया कि हमारा अभी राग द्वेष है, इस मामले में तो रहता है सबका रहता है। आचार्य जी के पास भी जब आप जयपुर वाले अभी आएंगे सुनाएंगे, हम गए थे और हमने जरा ही सा ये कहा कि हम जयपुर से आए हैं, महाराज जी ने बहुत बहुत नमस्तु कहा, तो महाराज जी ने हमसे दो बातें कर ली, अरे वाह पचासों लोग खड़े थे कोई से नहीं करी, हमसे करी, हमने जैसे ही कहा हम जयपुर से आए, मजा आ गया। देखो अब दूसरों करे तो अपन को छटपटाहट लग रही है, अपन करके आ गए सो जनता को सुना रहे सबको कि हम बात करके आ गए, ये क्या है, यही तो हो ही है ना, इसी को इसको क्या कहेंगे, राजदेश कहेंगे क्या, नहीं भाई आप इतनी दूर से आए हैं और महाराज के पास आप उनकी सेवा में हैं, ऐसा सुनते ही साथ महाराज का आपको नमोस्तु, फौरन अभी आने वाला आशीष सुनाएगा वो, पांच दिन रहे हम क्या क्या मजा आया है, हम तो तैयार ही बैठे उससे सुनने के लिए कि फिर क्या हुआ, फिर कौन कौन महाराज के पास, सबके पास उसने रेफरेंस दिया होगा, हम रोज जाते हैं महाराज के आहार में तो उसको सबको आहार देने मिल गए होंगे, यहीं से अभी बता दे रहा हूं, जब वो आएगा तब तो बताएगी वो, क्यों कैसे हो, मैंने बता दिया था उसको, तुम तो इतने बोल दो तुम कि महाराज जी के रोज आहार में जाता हूं, तो फौरन अभी अभी कौन बता रहे थे, वो पीएल बनाड़ा आए थे, वो बता रहे थे कि हम तो बाहर खड़े हुए थे हाथ जोड़ करके, आचार्य जी ने इशारा करके चौके में इनको दे दो, उनसे ले उनसे दिला लिया, इनको बुला लो इनको दिला दो, अब क्यों गुणशुद्ध प्रमोदन सबके मन में रहता है, अरे भाई इतनी इतनी पैसा होने के बावजूद भी इतना धर्म ध्यान करते हैं, दोनों चीजें एक साथ हैं सरस्वती और लक्ष्मी, तो क्या उसका उसका पुण्य भी यही है क्या, भैया जिसकी तरफ ध्यान गया है उसका कोई ना कोई पूर्व जन्म का पुण्य भी होगा, आपके पाप के उदय में आपको उसका पुण्य खल रहा है, ये कहना चाहिए, आपके पुण्य का उदय होता तो आपको उसके पुण्य में प्रशंसा प्रसन्नता होती, क्या अरे वाह आनंद आ गया आपको, ऐसा हमने जो है उदाहरण सुनाए थे दोनों कल, दो छोटे छोटे से एक ही घटना को दो लोग हैं, दो अपने अपने ढंग से उसका अर्थ निकालते हैं, महाराज को सांस भेंट न करना चाहते कब करें, क्या भेंट कर सकते हैं, इसकी बहुत आसान सी प्रक्रिया है, सुबह से और शाम तक कल है ना, मंच पर भी आप आकर के महाराज को भेंट करें, और पहले भी कर सकते हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि क्या पहले कर सकते हैं, हमने कहा जरूर जब वो कमरे में बैठे हैं तब भी आप कर सकते हैं, और बाद में जब मंच पर आएंगे तब भी 10 मिनट का समय रखा है, 10 मिनट में सब अपने अपने लेकर के आओ, अपने घर से लाना हो तो अपने घर से लाओ, किसी के पास, कोई व्यक्ति पूछ रहे थे हमारे घर में रखा हुआ सनाव सार जी क्या हम वो दे सकते हैं, बहुत अच्छा उसमें क्या है, कोई ऐसा थोड़ी है कि यहीं पर जो मिलेगा वही देना पड़ेगा, नहीं यहां बाहर भी अगर आपको उपलब्ध है तो वो दे दीजिएगा, इसमें झगड़े में नहीं पड़िएगा कि
बोली लगेगी कि फलाना होगा, कल बिल्कुल कोई भी बोली नहीं लगेगी, बता दिया मैंने इनको पहले से ही। इनको पूछेंगे डॉक्टर साहब हर एक चीज में पैसा। अरे जिसके पास जो है शास्त्र वो अपना लेके आएगा, और कोई जरूरी है कि जब 1000 रुपए देगा तभी शास्त्र देगा, वो अपने 10 रुपए का खरीद के लाएगा वो दे देगा, उसकी जितनी गुंजाइश है वो उतना लेके दे। इसलिए हम आपको ज्ञान का उपकरण दे रहे हैं विशुद्ध मन से, बात तो कुल इतनी है। अब बहुत सारे प्रश्न तो जो है वो रोज रह जाते हैं, और कह रहे थे कि एक भजन सुना दो, अब कौन सा वाला सुना दें? वाह
ये कल देख लिया।
अच्छा वाह, इस प्रश्न का जवाब रहने दो, अभी जवाब देंगे तो थोड़ा कड़ा जवाब हो जाएगा, कल मजे से देंगे। हाँ क्योंकि एकदम कड़ा जवाब आ गया मन में, प्रश्न पढ़ के सुनाए आपके मन में भी आएगा कि अरे कैसा। महाराज आहार करते समय यदि दूसरे की शुद्धि का ख्याल रखें तो छठा गुण स्थान हो जाएगा, फिर तो ऐसा ना करके सातवें गुण स्थान वाला कार्य करना चाहिए। हमने उसको हंसी में पढ़ दिया, वैसे कड़ा जवाब भी दिया जा सकता था। छठा सातवां गुण स्थान ऐसा हंसी खेल नहीं है। हमारा कौन सा गुण स्थान है हम ही नहीं कह सकते, कि पहला गुण स्थान है मिथ्यात्म में पड़े हो। आप क्या समझ रहे हैं छठा सातवां गुण स्थान हंसी खेल है क्या प्राप्त करना? हाँ, इसलिए छठा सातवां गुण स्थान का बहुत विशिष्ट, उसको ऐसे हल्के उसमें नहीं लेना। हमने जो आपको समझाया था कि कैसे समझे अपन प्रमत्त और अप्रमत्त अवस्था, प्रमत्त और अप्रमत्त अवस्था कैसी है, जैसे कि हमारे ग्रहण करने के भाव हो गए ये तो प्रमत्त अवस्था है, लेकिन ग्रहण करके आगम की आज्ञा के अनुसार ग्रहण करना है, मैं शोधन करूं, ऐसा जो सावधानी है वो अप्रमत्त अवस्था है, ये प्रवृत्ति आत्मक प्रमत्त अवस्था है, इसको हंसी खेल नहीं बनाइएगा। हाथ बंद करके अभी आपसे ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसे कैसे ग्रहण कर लूं, आप शुद्धि बोलो तब ग्रहण करूंगा, ये भी सातवां गुण स्थान है। मैं ऐसे जब ग्रहण करने का भाव करूं, जब मेरा प्रमाद कहलाएगा, शुद्धि बनवाने का भाव करना ये तो आगम के अनुसार है, बोलो पहले आगम के अनुसार मेरी शर्त के अनुसार, नहीं तो फिर तो ये भी वही चीज हो जाएगी, मेरी अंजलि तब छूटेगी जब मेरी शर्त पूरी होगी जो मैंने सोचा है, वैसा मन शुद्धि वचन शुद्धि नवदा भक्ति पूरी। इस पर अपन फिर डिस्कशन करेंगे, अच्छा लंबा चीजें। और क्या लिखा था इन्होंने इन्हीं की राइटिंग में, कोई शुद्धि बोलते समय क्रम बदल दे तो क्या करें? असल में हमने एक चीज मार्क करी कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि सब शांति से क्यों चल रहा है, मुझे पता नहीं क्यों, झूठ हो सकता झूठी भी हो सकती, पर मेरे मन में पता नहीं क्यों ये भाव बार बार आ रहा कि किसी भी तरह से कोई संक्लिष्ट तो हो, ये जो है वो कहीं ना कहीं कोई चीज है जो कि ये मन में उसके तो वो अपने प्रश्न, इससे हमें बड़ा फायदा होता है, हम ये प्रश्नोत्तर करते हैं इससे हमें बड़ा फायदा होता है, हमें ये फायदा होता है कि कहां क्या चल रहा है सब मालूम पड़ जाता है, किसके मन में क्या चल रहा है इससे बिल्कुल क्लियर, साइकोलॉजी का कोई भी व्यक्ति होगा वो फौरन पकड़ लेगा, और अगर लगातार एक ही राइटिंग मेरे पास आए तो उस व्यक्ति तक को समझ में ट्रेस कर सकता हूं कि ये व्यक्ति लिखने वाला ये। तो आप थोड़ा सा सावधान रहें, आप स्वयं संश्लेष कर रहे हैं तो अकेले अकेले करें, सबको शामिल मत करें, है कि नहीं? खैर ठीक है, अपन जो है शुद्धि का क्रम बदलना हो तो बदल दे, कल से मन शुद्धि वचन शुद्धि की जगह पर काय शुद्धि वचन शुद्धि मन शुद्धि बोले, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप पहले आहार शुद्धि बोले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, पर ठीक है सोच है अपना अपना। मैं आपको कौन सी वाली सुना दूं? अरंत नाम वाली सुना दूं?
आगे आगे अपनी अर्थी के मैं गाता चलूं, सिद्ध नाम सत्य है अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंछी शाख से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है, सृष्टि सारी देख ले पर्याय ही अनित्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा है रास्ता, आंख जब भी तो कोई शत्रु है न मित्र है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य, डोरियों से मैं बंधा नहीं ये मेरा संस्कार था, एक कफन पर मेरा रह गया अधिकार था, तुम उसे उतारने जा रहे ये सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य, आपके अनुराग को आज ये क्या हो गया, मैं चिता पर चढ़ा महान कैसे हो गया, सत्य देख हंस रहा कि जल रहा असत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य, आपके ही वंश से भटका हुआ हूँ देवता, आत्म तत्व छोड़ कर मैं जगत को देखता, ये अनादिकाल की भूल का ही कृत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, आगे आगे अपनी अर्थी के मैं गाता चलूं, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत खड़ी वृक्ष पाओ भले खड़े पाओ घने हाँ बड़े, वृक्ष हाँ भले खड़े हाँ घने हाँ बड़े, एक पत्र क्षण भी मांग मत अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी तू न थमेगा कभी, तू न थकेगा कभी तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, ये महान दृश्य है कि चल रहा मनुष्य है, ये महान दृश्य है कि चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लत पथ लत पथ लत पथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हाँ भले खड़े हाँ घने हाँ बड़े, एक पत्र क्षण भी मांग मत अग्निपथ,
मैत्री भाव करेंगे,
मैत्री मुकुर ये चिद चिता समम भांति द्रव्य व्ययजनिल संतोऽन्तरयिता। भांति व्ययधनिल संतोंतरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रगटन परो भानुरिवयो
जगत साक्षी मार्ग प्रगटन परो भानुरिवयो
महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे
स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे
अताम्रम यच्चक्षु कमलयुगलं स्पंदरयितं
ताम्रम यच्चक्षु
कमलयुगलं स्पंदरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति बाह्यन्तरमपि
कोपापायं प्रकटयति बाह्यन्तरमपि
स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम्
नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम्
लसत्पादाम्भोज द्वयमिह यदीयं तनुव्रताम्
पादाम्भोज
द्वयमिह यदीयं तनुव्रताम् भवज्ज्वाला शान्त्यै प्रभवति जलं वास्मृतमपि
ज्वाला शान्त्यै
प्रभवति जलं वास्मृतमपि महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे
नयन पथ गामी भवतु मे
यदि यदर्चाभावेन प्रमुदितमनादर्दुरयिह
यदर्चाभावेन प्रमुदितमनादर्दुरयिह
क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुखनिधि
क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुखनिधि
लभन्ते सद्भक्ता शिवसुख समाजं किमु तदा
लभन्ते सद्भक्ता शिवसुख समाजं किमु तदा
महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे
नयन पथ गामी भवतु मे
कनत् स्वर्णाभासो व्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो
स्वर्णाभासो
व्यपगत तनुर्ज्ञान निवहु विचित्रात्माप्येको नृपति वर सिद्धार्थ तनया आत्मा पे को नृपति वर सिद्धार्थ तनया अजन्मापी श्रीमान विगत भवरागोद्भुत गतिर् मापी श्रीमान विगत भवरागोद्भुत गतिर् महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे यावा गंगा विविधनय कल्लोल विमला
यावा गंगा विविधनय कल्लोल विमला
ब्रह्मज्ञानाम्बो भीर जगति जनताम यास्नपयति ज्ञानाम्बो भीर जगति जनताम यास्नपयति इदानीमप्येषा बुध जनमरालैः परिचिता
इदानीमप्येषा बुध जनमरालैः परिचिता
महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे नयन पथ गामी भवतु मे अनिर्वारोद्रेकस त्रिभुवन जयी काम सुभटा
अनिर्वारोद्रेकस
त्रिभुवन जयी काम सुभटा कुमारावस्थाया मपि निज बलाद्येन विजिता
कुमारावस्थाया
मपि निज बलाद्येन विजिता स्फुरन्नित्यानन्द प्रशम पद राज्याय सजिना
स्फुरन्नित्यानन्द
प्रशम पद राज्याय सजिना महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिगभिष
महामोहातंक
प्रशमन पराकस्मिगभिष निरापेक्षो बंधुर् विदितमयि मामंगलकर
निरापेक्षो बंधुर् विदितमयि